अभिमन्यु और अभिमान साथ में सिंघानिया मेंशन आ चुके थे। हालांकि अकेले अंदर जाने में अभिमान को बहुत डर लग रहा था, पर अभिमन्यु के साथ होने की वजह से वो अंदर कदम रखने की हिम्मत कर पा रहा था। ऊपर से मिस्टर आशुतोष सिंघानिया ने अभिमान और अभिमन्यु को साथ में देख लिया था। अभिमान वहां अभिमन्यु के साथ आया था, ये देखकर उनके चेहरे पर कड़वाहट भरे भाव उभर आए थे। उन्हें रिसीव करने के लिए खुद आशुतोष नीचे आए। सिंघानिया मेंशन की सेकंड एंट्रेंस के अंदर की तरफ आशुतोष खड़े हुए थे, तो बाहर अभिमान अभिमन्यु के साथ। उन दोनों के बीच में आई कॉन्टैक्ट हो रहा था। दोनों के ही दिमाग में अचानक 17 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं, जहां अभिमान स्काई के साथ खड़ा था तो आशुतोष पुलिस के साथ। वी आर रियली सॉरी मिस्टर सिंघानिया, अगर ये बच्चा बीच में नहीं आता तो हम आपकी बेटी को सुरक्षित घर ले आते। हालांकि इसने अपनी तरफ से उसे बचाने की कोशिश की थी, पर इसका नाजुक हाथ ज़्यादा देर तक उसे थाम नहीं पाया। हम डेड बॉडी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर ने अफसोस भरे लहजे में कहा। पुरानी बातें याद आते ही अभिमान की नज़रें अपने आप नीचे हो गई थीं। शायद वो उस दिन वहां पर नहीं जाता तो पुलिस आशिका को बचा भी लेती। आशुतोष ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, अंदर आ जाओ, बोलते हुए उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। मिस्टर अभिमन्यु राजवंश, सोचा नहीं था कि आप यहाँ डिनर के लिए इसके साथ आएंगे, वरना आपके साथ एक मीटिंग तक के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे तो लगा आपके पास इतना टाइम ही कहाँ कि जो बिना बुलाए किसी के भी घर डिनर पर चले आएंगे। बातों ही बातों में आशुतोष ने अभिमन्यु पर तंज कसा। अभिमन्यु के चेहरे पर वही हल्की ना दिखने वाली मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने जवाब में कहा, जी बिल्कुल, प्रोफेशनल कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब बात पर्सनल कामों की आती है तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ। फिर बात तो यहाँ अभिमान की थी। मुझे आपके यहाँ देखकर खुशी हुई, आशुतोष ने कहा और वो अंदर जाने के लिए पलट गए थे। अभिमन्यु भी उनके पीछे आने लगा, लेकिन अभिमान अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और अभिमान का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अंदर खींच लाया था। आशुतोष ने अभिमान को डिनर पर बुलाया था, इस बात से यज्ञ अभी भी गुस्सा था और वो अब तक घर नहीं आया था। अभिमान जब आगे गया तब आशी और काजल उसके आने का इंतजार कर रही थी। आशी के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी जो अभिमान को चिढ़ा रही थी। वहीं आशी के लिए काजल ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। वो पूरे दिल से अभिमान को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। अंदर आओ ना बेटा, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, काजल ने अभिमान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, जो अभी भी बिना मन से छोटे कदम बढ़ा रहा था। नमस्ते आंटी, अभिमान बोला। तुम इतना इनफॉर्मल क्यों हो रहे हो, आशी अभिमान के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने ऐसे ही जाहिर किया जैसे उन दोनों के बीच में कितना ही प्यार हो। आशी ने अभिमान के हाथ को अपने हाथ से इंटरवीन करके कहा, अब तो तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, इसे अपना घर ही समझो। हाँ, आशी बिल्कुल ठीक कह रही है, काजल ने भी उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई। अभिमान ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया था। उसने एक नज़र घर की तरफ दौड़ाई तो बीते सालों में सिंघानिया मेंशन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया था। यही जगह थी जहां वो हर संडे को आशिका के साथ खेलने के लिए आता था। पुरानी बातें याद करके अभिमान की आंखों में नमी उतर आई थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। हाँ, डिनर बस तैयार ही है बेटा, काजल ने मुस्कुरा कर कहा और उन्हें डाइनिंग टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। अभिमान अपने कदम आगे बढ़ाता उससे पहले आशुतोष ने सख्त आवाज़ में कहा, पहले मुझे इससे बात करनी है, वो भी अकेले में। आशुतोष तो अभिमान का नाम तक नहीं ले रहे थे। उनका इशारा साफ था कि अभिमन्यु इस बातचीत के बीच में नहीं आ सकता है। जाने से पहले अभिमान ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया था। आशुतोष अभिमान को लेकर अपने स्टडी रूम में चला गया था तो वहीं अभिमन्यु पीछे से काजल और आशी के साथ में था। अभिमन्यु को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए काजल ने कहा, मैंने सुना है कि आप अपनी वाइफ के साथ मुंबई आए हुए हैं, उन्हें भी साथ ले आते। हाँ जरूर लाता, अगर उसके पास टाइम होता। वैसे भी आपने सुना नहीं क्या कि आपके हस्बैंड ने मेरे आने पर भी मुझे टॉन्ट मार दिया था, अभिमन्यु ने जवाब दिया, जिस पर काजल ने शर्मिंदा होकर अपनी नजरें नीचे कर ली थी। डैड थोड़े रूढ़ हैं चाचू, आशी ने सफाई में कहा। उन्हें यही लग रहा होगा कि अभिमान उनका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो आपको हथियार बनाकर लेकर आया है। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि वो पिछले कुछ महीनों से आपके साथ बस एक मीटिंग के लिए कितना ट्राई कर रहे हैं। आशी का कहना सही था। वैसे तो वो बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन राजवंश फैमिली के कौन से शख्स से आशुतोष क्या एक्सपेक्ट करता था ये उसे अच्छे से पता था। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। आशी उसे घर दिखाने के बहाने वहाँ से ले गई तो वहीं अभिमान आशुतोष के साथ स्टडी रूम में था। वो जानता था कि यहाँ आने के बाद उसे उसकी पुरानी गलती पर हजारों बातें सुनाई जाएंगी। स्टडी रूम के अंदर आते ही आशुतोष ने सख्त लहजे में कहा, मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। नहीं, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, बस थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ था कि आपने मुझे बुलाया है। चलिए हम दोनों के लिए ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मिस्टर सिंघानिया, जितना मुश्किल आपको मुझे बर्दाश्त करना हो रहा है, उतना ही मुश्किल मेरे लिए आपका सामना करना है। मैं आशी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ, अभिमान ने सीधे सीधे कहा। उसे लगा इसी बहाने उसे आशी से भी छुटकारा मिल जाएगा, और आशुतोष तो पहले ही उनके रिश्ते से खुश नहीं था। आशुतोष के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उन्होंने उसी अंदाज में कहा, तो आशी बिल्कुल ठीक कह रही थी, डाइवोर्स लेकर मेरी बेटी से छुटकारा लेना चाहते हो ताकि किसी और से शादी कर सको। मैं ये होने नहीं दूंगा। अभिमान हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे यही लगा था कि आशुतोष ने तलाक की बात करने के लिए उसे वहां बुलाया होगा। आशुतोष ने अभिमान के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखा तो वो बोले, क्या लगा था पिछली बार की तरह गलती करके भाग जाओगे? मेरी बेटी से शादी की है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब तक तुम दोनों की शादी के बारे में कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि लोगों को तुम्हारी इस अजीब शादी के बारे में पता चले, तो बेहतर होगा कि दिखावे के लिए ही सही, लेकिन तुम दोनों फिर से शादी करो। आशुतोष की बात सुनकर अभिमान को झटका सा लगा। वो आशी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं ये नहीं करने वाला, अभिमान जल्दी से बोला। मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम ये नहीं करने वाले? अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो तुम। मैं जानता हूँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम्हें बर्दाश्त करना भी मेरे लिए मुश्किल है, पर यहाँ बात मेरी बेटी की जिंदगी की है। एक बेटी की जिंदगी तुम ले चुके हो, तो अब दूसरी की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा अभिमान राजवंश, आशुतोष गुस्से में बोले। उन्हें यही लग रहा था कि अभिमान आशी से उनके रूखे बर्ताव का बदला ले रहा था। वही अभिमान फंस कर रह गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आशुतोष यहाँ उसे शादी की बात करने के लिए बुलाएंगे। अभिमान को आगे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि आशुतोष वहां से बाहर निकल गए थे। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। हर हाल में अभिमान को आशी के साथ अपनी शादी को उम्र भर निभाना ही था। आशुतोष स्टडी रूम से बाहर निकले तो सामने काजल खड़ी थी। उसने आशुतोष के चेहरे पर गुस्से के भाव देखे तो वो नरमी से बोली, मैंने आपसे कहा था कि हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तो आपको अपनी नफरत को भूलकर फैसला लेना होगा।
मैंने सब कुछ भूलकर ही फैसला लिया है काजल, लेकिन ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। मैंने तो ऐसे ही कहा कि आशी से शादी कर ले, पर ये इनकार कर रहा है। आशुतोष ने काजल को अंदर जो भी हुआ उसके बारे में बता दिया था। काजल ने हैरानी से अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने अपनी सफाई में कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता आशी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन हमारी शादी उस तरह नहीं हुई जैसे आप लोग सोच रहे हो। हम एक दूसरे से प्यार। अभिमान उन्हें पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन बीच में आशी आ गई थी। उसने अभिमान की बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ अभिमान, तुम मुझसे गुस्सा हो, पर प्लीज़ ये मत कहो कि अब हमारे बीच प्यार नहीं रहा। ये डिसीजन मेरा था कि मॉम डैड की परमिशन के बिना हम साथ में नहीं रहेंगे। तुम इस तरह मुझे सज़ा नहीं दे सकते हो। आशी रोने लगी थी और आशुतोष के गले लग गई थी। वो जानती थी कि किस तरह मौके का फ़ायदा उठाना है। आशुतोष ने उसे सहलाया और अभिमान की तरफ देखकर कहा, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए ये कैसे इस शादी से इनकार करता है। सोचा था आराम से बैठकर बात करूंगा, लेकिन नहीं, तुम आराम से बात करने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी मॉम और बाकी राजवंश फैमिली से मैं खुद बात कर लूंगा। खुद को तैयार कर लो अभिमान राजवंश, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की है तो तुम भाग नहीं सकते हो। उन्होंने वहां एक डिनर प्लान किया था, लेकिन अभिमान के इनकार ने अच्छा खासा माहौल को बिगाड़ दिया था। वो वहां से बिना कुछ खाए ही जाने लगा तो अभिमन्यु भी उसके साथ था। बाहर निकलते ही अभिमान ने अभिमन्यु से कहा, मुझे पहले ही उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए था। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है चाचू? वो अब तक शांत थी क्योंकि अंदर ही अंदर वो मिस्टर सिंघानिया को प्रेशराइज कर रही थी। क्यों लोगों को उसकी चालें समझ नहीं आती हैं? तुम्हें पहले ही सच पता देना चाहिए था अभिमान, एक न एक दिन ये दिन आना ही था। फिलहाल यही कहूंगा कि कोई भी इन्वॉल्व क्यों ना हो जाए, अगर तुम्हें आशी के साथ नहीं रहना तो अपने फैसले से पीछे मत हटना और ना ही किसी की बातों में आना। अभिमन्यु ने उसे समझाया, वो फिलहाल इतना ही कर सकता था। अभिमन्यु वहां से ऐशिका को लाने के लिए निकल गया था तो अभिमान इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसका घर जाने का मन नहीं कर रहा था और ना ही निशा को लाने के लिए। ऐसे में वो खुद का ध्यान भटकाने के लिए काम का सहारा लेना चाहता था। वो सीधे आशिका के फ्लैट पर पहुंचा। इतनी रात को आशिका भी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जबकि रचित ने साफ कर दिया था कि अभिमान आज नहीं आने वाला है। दरवाज़ा खोलने पर सामने अभिमान को देखकर आशिका ने कहा, मिस्टर राजवंश, ये मेरा घर है, कोई क्लब नहीं जो आप कभी भी मुंह उठाकर चले आते हैं। वैसे भी ये काम का टाइम नहीं है, लेकिन मुझे काम करना है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें इंटरनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, मीटिंग में आ नहीं पाया था। अब कंटिन्यू पढ़ते हैं, अभिमान ने सख्त आवाज़ में कहा। वो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस आया था। अभिमान के बिना कुछ कहे ही अब उसका चेहरा देखकर आशिका को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा और वो काम करने लग गई थी। दूसरी तरफ ऐशिका स्कॉट एंटरप्राइजेज में पहुंची। जैसा कि उसको अंदाजा था, उनके पेपर्स और बाकी चीज़ें उसे काफ़ी संदेहजनक लगीं। ऐशिका ऐसी सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कभी भी उन लोगों के हाथ में नहीं देने वाली थी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर आहूजा, लेकिन ये सब पेपर्स मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी कंपनी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। इशिका ने तुरंत मना कर दिया था। एक बार आप चेक करके देखिए डॉक्टर मर्चेंट, आप चाहें तो हम अंडर द टेबल भी सेटिंग कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इंडिया में मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट मेरे बॉस से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आहूजा ने कहा। वो सीधे सीधे इशिका को रिश्वत ऑफर कर रहा था। इशिका के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने कहा, आप मुझे खरीद नहीं सकते हैं मिस्टर आहूजा, खासकर उस सिचुएशन में जब ये प्रोजेक्ट हमारी कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में ये प्रोजेक्ट चाहिए तो लीगल वर्क और सही इन्फॉर्मेशन के साथ आइए। मेरे पास इतनी अथॉरिटी तक मौजूद है कि मैं एक भी कंपनी न सेलेक्ट करूं। तो इसका मतलब मार्केट में पहली खबर बिल्कुल सही थी। आप खुद की प्राइवेट कंपनी को इस प्रोजेक्ट में उतारना चाहते हैं, मिस्टर आहूजा ने सिर हिलाकर कहा। वो इशिका पर इल्जाम लगा रहा था। आपको जो सोचना है बेशक सोचिए, कहा ना आपकी कंपनी इसके लायक नहीं है, इशिका ने सख्ती से जवाब दिया और फिर वहां से जाने लगी। इशिका के साथ में दो और ऑफिसर्स मौजूद थे। बाहर आकर उन्होंने इशिका से कहा, डॉक्टर मर्चेंट, आपको उनसे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे इंस्पेक्शन का रिजल्ट तुरंत बताना जरूरी नहीं था। हाँ जरूरी नहीं था, लेकिन वो जो कर रहे थे उन्हें इसका एहसास करवाना जरूरी था। इस इंस्पेक्शन के अलावा मैं इस कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाली हूँ। ये लोग अपने प्रोजेक्ट के चलते लोगों की जान के साथ कैसे खेल सकते हैं, इशिका ने गुस्से में कहा। डॉक्टर मर्चेंट, उनमें से एक ऑफिसर ने इशिका से बात करने की कोशिश की, पर उसने उसकी बात बीच में काट कर कहा, दो दिन बाद होने वाली मीटिंग में मिलते हैं मिस्टर जेम्स, इशिका ने इतना ही कहा और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। उसके जाते ही मिस्टर आहूजा बाहर निकल कर आए। मिस्टर जेम्स ने गहरी सांस ली और कहा, वो बहुत ईमानदार है, मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर मर्चेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है, आपको खुद ही बैकआउट कर देना चाहिए। अपनी तरफ से कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन वो होमवर्क करके आई थी, उसे पहले से ही आपकी सिचुएशन के बारे में पता था, ऊपर से पेपर्स देखने के बाद उसने आपको पकड़ लिया। जेम्स सही कह रहे हैं, अब किसी भी हाल में आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। ऊपर से वो आपके खिलाफ एक्शन लेने का सोच रही थी, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में आपकी ब्रांच बंद हो जाएगी, दूसरे ऑफिसर ने कहा। वो लोग पहले ही स्कॉट एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे थे, उन्हें लगा कि वो इशिका को भी मना लेंगे, पर उनका अंदाजा गलत निकला। अगर इंडिया में स्कॉट एंटरप्राइजेस बंद हो जाती तो मिस्टर आहूजा पूरी तरह से बर्बाद हो जाते और साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ता। वो दोनों ऑफिसर्स मिस्टर आहूजा के बोलने का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर आहूजा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और किसी को कॉल करके कहा, खत्म कर दो उसे। इसी के साथ उन दोनों ऑफिसर्स की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। इशिका की जान खतरे में थी और वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। अभी तक इशिका पर खतरा आया नहीं था और वो यही सोच रहे थे कि वो किसी भी हाल में उसे इससे बचा लेंगे। 4444